आज हम जापान के आधुनिकीकरण पर चर्चा करेंगे। विदेशियों के आगमन ने जापानी युवकों के हृदय में उनके विरुद्ध तथा इसके साथ ही जापान के शासक शोगुन के विरुद्ध घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया था। जापान के सामंत तथा वहां के सैनिक वृत्ति करने वाले समुराई ही वहां के शोगुन की शक्ति के आधार थे। यूरोपीय देशों को सुविधा देने के कारण ये दोनों ही वर्ग शोगुन से नाराज हो गए और विद्रोह करके शोगुन को सदा के लिए समाप्त कर दिया। अब जापान की राजनीति में भी परिवर्तन आया। अभी तक जापान का सम्राट मुत्सुहितो क्योटो के राजभवन में एक कठपुतली के रूप में रहा करता था। उसे जापान में एक दिव्य विभूति माना जाता था। अब वह वास्तविक शासक के रूप में प्रकट हुआ और शोगुन की राजधानी ईडो में आकर रहने लगा और उसने ईडो का नाम बदलकर टोक्यो कर दिया। सामंतों तथा समुदायों ने स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकारों का त्याग किया और इस प्रकार जापान में सामंतवाद का अंत हो गया। अब सभी प्रकार के लोग जापान की सेना में भर्ती हो सकते थे। अभी तक सामंतों के अधीन रहने वाली टुकड़ियों में विभक्त सेना अब संगठित होकर जापान के सम्राट के अधिकार में आ गई। जापान की इस रक्तहीन क्रांति को मेजी पुनर्स्थापना कहते हैं। इस क्रांति के उपरांत जापान में आधुनिकीकरण के लिए प्रबल आंदोलन चल पड़ा, जिसके फलस्वरूप देश के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप जापान देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में विश्व में एक महान, शक्तिशाली एवं आधुनिक राज्य बन गया। सामंती प्रथा का अंत। मेजी पुनर्स्थापना के पूर्व जापान में सामंती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन 1868 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति के बाद इस व्यवस्था का बना रहना कठिन हो गया। नई परिस्थिति में सम्राट के सम्मुख सबसे मुख्य प्रश्न यह था कि देश में एक व्यवस्थित और शक्तिशाली सरकार की स्थापना की जाए और संपूर्ण जापान आंतरिक भेदभाव भूलकर एक केंद्रीय शासन के सूत्र में आबद्ध हो जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामंतवाद का अंत करना अत्यंत आवश्यक था। सबसे पहले सम्राट ने प्रत्येक सामंत की जागीर के लिए सरकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति की। जागीरों पर सामंतों के शासन का अंत नहीं किया गया, लेकिन उन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण कड़ा कर दिया गया। इसके फलस्वरूप जागीरों में रहने वाली प्रजा इस बात का अनुभव करने लगी कि सम्राट का उस पर प्रत्यक्ष शासन है। कुछ सामंतों को बाध्य किया गया कि वे स्वेच्छापूर्वक अपने सामंती अधिकारों का परित्याग कर दें। इसके फलस्वरूप सत्सुमा, चोसू, हिजन, तोसा इत्यादि अनेक सामंतों ने अपनी अपनी जागीरों को छोड़ दिया और उनकी सारी सामंती सुविधाएं समाप्त कर दी गई। 1871 ईस्वी में सम्राट ने एक घोषणा के द्वारा सामंती प्रथा का विधिवत रूप से अंत कर दिया। इस घोषणा के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सामंत लोगों को जन्म भर पेंशन मिलती रहे और उनकी नौकरी में जो समुदाय सैनिक थे उन्हें भी राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलती रहे। इस प्रकार जापान की राजनीति तथा सामाजिक स्थिति में एक महान परिवर्तन हो गया। सदियों से चली आने वाली सामंती प्रथा का अंत हो गया और संपूर्ण देश एकता के सूत्र में बंध गया। अब केंद्रीय सरकार की सत्ता सर्वोच्च हो गई और जापान एक राष्ट्र बन गया। 1889 ईस्वी का संविधान। 1889 ईस्वी में जापान के लिए जो शासन बना, इसके अनुसार सम्राट को राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी मान लिया गया। सम्राट की स्थिति अत्यंत पवित्र और अनुल्लंघनीय रखी गई। सम्राट को राज्य के विविध पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। विशेष परिस्थिति में युद्ध की घोषणा करने और संधि या समझौता करने का अधिकार भी सम्राट के पास सुरक्षित रहा। विशेष परिस्थिति में सम्राट को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। शासन कार्य में सम्राट की सहायता करने के लिए संविधान के अंतर्गत एक मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई। मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी और मंत्रीगण सम्राट के प्रति उत्तरदायी रहते थे। संसद के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं था। इस शासन विधान ने जापान के लिए दो सदन वाली संसद की व्यवस्था की। एक सदन का नाम लोकसभा और दूसरे का लॉर्ड्स सभा रखा गया। लॉर्ड्स सभा में सम्राट द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे। इसमें अधिकांश संख्या पुराने सामंतों की थी। कुछ व्यक्ति आजीवन इसके सदस्य रह सकते थे। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। वोटरों के लिए संपत्ति की शर्त रखी गई थी। साल में एक बार संसद का अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त संसद के विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते थे। संसद का काम कानून बनाना था। इसकी स्वीकृति से ही देश में कोई नया कर लगाया जा सकता था। लेकिन सम्राट को यह अधिकार प्राप्त था कि वह संसद द्वारा स्वीकृत किसी कानून को वीटो कर सके। इस संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की भी व्याख्या की गई। कानून के समक्ष सभी जापानी नागरिक बराबर हो गए। राजकीय पद या नौकरी प्राप्त करने का सबको अधिकार प्राप्त हुआ। भाषण, लेखन व अन्य प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने, सभाएं करने, संगठन बनाने और अपने विचार तथा विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता सबको दी गई। राज्य के कर्मचारियों को किसी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रहा। यह व्यवस्था की गई कि अभियुक्त पर न्यायालय में मुकदमा चलाकर ही उसे कोई सजा दी जाए। संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी गई। सभी नागरिकों को सरकार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार मिला। जापान के शासन विधान में नागरिकों के अधिकार ठीक उसी प्रकार के थे जैसे कि पाश्चात्य देशों में लोकतंत्र शासन विधानों में प्रतिपादित थे। शासन सुधार। नई परिस्थिति में शासन के क्षेत्र में सुधार करना भी आवश्यक था। 1868 ईस्वी में ही सम्राट मेजी ने एक घोषणा प्रकाशित की थी जिसमें शासन संबंधी नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। इस घोषणा में एक लोकसभा की स्थापना की बात भी कही गई थी। कहा गया कि राज्य की नीति का निर्धारण यही सभा करेगी और इसमें जापान के अधिक से अधिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होगा। न्याय के क्षेत्र में सभी नागरिकों को समान स्तर पर रखा जाएगा। लेकिन शासन सुधार के कुछ विरोधी भी थे जो किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। आर्थिक सुधार। सरकार की ओर से जापान में कल कारखाने खोलने के लिए लोगों को खूब प्रोत्साहित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों के अंदर देखते देखते जापान प्रथम श्रेणी का औद्योगिक राष्ट्र बन गया। वहां के विशालकाय कारखानों में कपड़ा, रेशम, लोहे के सामान आदि प्रचुर मात्रा में तैयार होने लगे। जापानी सरकार की एक यह भी नीति थी कि ऐसे व्यवसाय के विकास पर विशेष रूप से योगदान दिया जाए जो सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। इसलिए जापान में खानें खोदी गईं। लोहा इस्पात के व्यवसाय को उन्नत किया गया तथा युद्ध उपयोगी सामग्रियों के उत्पादन के लिए कारखाने खोले गए। वाष्प शक्ति के विकास पर विशेष बल दिया गया। 1890 ईस्वी तक जापान के अधिकांश कल कारखाने भाप की शक्ति से ही काम करने लगे। औद्योगिक क्षेत्र में कुछ ही वर्षों में जापान ने इतनी उन्नति कर ली कि यूरोप के किसी भी राज्य का इस क्षेत्र में मुकाबला वह कर सकता था। इसके अतिरिक्त यातायात और आवागमन के साधनों में विकास के लिए भी प्रयत्न किया गया। 1872 ईस्वी में जापान में सर्वप्रथम रेल लाइनों का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन 1894 ईस्वी तक सारे देश में रेल की लाइनें फैल गई। रेल की लाइनें देश के आंतरिक व्यवसाय व्यापार की उन्नति में पर्याप्त सहायता पहुंचा रही थी। इसके फलस्वरूप जापानी राष्ट्रीयता के विकास में भी बड़ी मदद मिली। इसके साथ ही जापान की सरकार ने डाक विभाग का संगठन किया। 1898 ईस्वी में टेलीग्राफ का जापान में पहले पहल प्रवेश हुआ। कुछ ही दिनों में जापान में डाकघरों की स्थापना हो गई। रेलवे और पोस्ट ऑफिसों के विस्तार के साथ साथ जापानी सरकार ने जहाज़ों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया। जापान में भाप से चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत में नाविक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। वह संसार की एक प्रमुख नाविक शक्ति बन गया। उसके जंगी जहाज संसार के किसी देश के ऐसे जहाज़ों से कम नहीं थे। व्यापार, उद्योग धंधे तथा यातायात के साधनों में विकास के साथ जापान में बैंकों के विकास पर भी ध्यान दिया गया। 1873 ईस्वी में जापान में नेशनल बैंक की स्थापना हुई। 1880 ईस्वी के आते आते जापान में 160 से भी अधिक बैंकों की स्थापना हो गई। बैंकों के जरिए करोड़ों का लेन देन शुरू हुआ। 1885 ईस्वी में बैंक ऑफ जापान की स्थापना हुई। व्यावसायिक उन्नति, रेलवे का निर्माण और बैंकिंग के विकास के फलस्वरूप जापान की आर्थिक दशा में आमूल परिवर्तन हो गया। अब वह पाश्चात्य देशों का मुकाबला करने की स्थिति में आ गया। जापान की औद्योगिक क्रांति ने ही बाद में साम्राज्यवाद को जन्म दिया, क्योंकि परिवर्तित स्थिति में जापान अब स्वयं चिंता में था कि वह अपने मालों के लिए विदेश में बाजार प्राप्त करे और विदेशी व्यापार से अपने को समृद्ध करे। इन उद्योग धंधों को चलाने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। जापान में कच्चे माल की कमी थी, इसलिए इन्हें प्राप्त करने के लिए कोई जापान को शीघ्र ही एक उग्र साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना पड़ा। कोई भी देश चाहे कितना ही पिछड़ा क्यों ना हो, इस तरह स्वेच्छापूर्वक अपना आर्थिक शोषण नहीं होने देगा। ऐसी स्थिति में पिछड़े देशों को अपना बाजार बनाने के लिए, वहां के कच्चे माल द्वारा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना आवश्यक हो गया। राजनीतिक प्रभुत्व का अर्थ था युद्ध, और युद्ध का अर्थ था सैनिकरण। जापान के सैनिक सुधार। जापानी साम्राज्यवाद का मुख्य कारण जापान में सैनिकवाद का विकास था। जापान की सैनिक व्यवस्था सामंती व्यवस्था पर आधारित थी, इसलिए सामंती व्यवस्था के अंत होने के कारण सेना के संगठन में परिवर्तन होना आवश्यक हो गया। अभी तक जापानी सेना का निर्माण समुराई लोगों द्वारा होता आया था। समुराई लोग सामंतों की सेवा में रहकर सैनिक सेवा प्रदान करते थे। सेना में प्रवेश इसी वर्ग तक सीमित था और जनसाधारण को सैनिक सेवा का अवसर नहीं दिया जाता था। पर जब सामंती प्रथा का अंत हो गया तो समुराई लोगों के इस एकाधिकार का भी अंत हो गया और जापान के सभी वर्ग के लोगों के लिए सेना में भर्ती का दरवाजा खोल दिया गया। अब जापान का कोई भी व्यक्ति जापानी सेना में भर्ती होकर सैनिक सेवा कर सकता था। दूसरे शब्दों में जापान की सेना का स्वरूप अब राष्ट्रीय हो गया, सामंती स्वरूप नहीं रहा। अब कोई भी व्यक्ति सैनिक बन सकता था और योग्यता के अनुसार सैनिक क्षेत्र में उन्नति कर सकता था। सेना के संगठन में 1872 ईस्वी में आमूल परिवर्तन हुआ। उस वर्ष एक राजाज्ञा प्रकाशित करके जापान में सैनिक सेवा को सभी के लिए अनिवार्य घोषित कर दिया गया। जापान में कृषि सुधार। 1868 ईस्वी के बाद जापान में केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं, वर्ण कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। सामंती प्रथा का अंत हो जाने से किसानों की स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी हो गई थी। 1872 ईस्वी में किसानों का अपने खेतों पर स्वत्व स्थापित हो गया और सामंती असुविधाओं से उन्हें छुटकारा मिल गया। पहले सामंत लोग अपनी जागीरों की भूमि जोतने वाले किसानों से उपज का एक निश्चित भाग लगान के रूप में लिया करते थे, पर अब सरकार ने उपज का भाग लेने के स्थान पर सिक्के के रूप में मालगुजारी लेना आरंभ कर दिया। इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रयत्न किए गए। किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए हर तरह से सहायता दी गई और उन्हें नए वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की विधि भी सिखाई गई। न्याय पद्धति में सुधार। जापान की सरकार ने अपने देश के दीवानी और फौजदारी कानूनों का नए सिरे से निर्माण किया। इस कार्य में फ्रांस और प्रशा के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया गया। न्याय विभाग को भी नए तरह से संगठित किया गया। छोटी और बड़ी अदालतों का निर्माण करते हुए फ्रांस की न्याय पद्धति को सम्मुख रखा गया। 1889 ईस्वी तक कानून और न्यायालय के संबंध अब नई व्यवस्था बनकर पूरी तरह तैयार हो गई थी। 1894 ईस्वी में संपूर्ण देश में इस पद्धति के अनुसार न्याय का प्रशासन चलने लगा। शिक्षा की उन्नति। 1868 ईस्वी की क्रांति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई। सोगुन सरकार के पतन और सम्राट द्वारा राजशक्ति को अपने हाथ में लेने के पश्चात जापान के विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने लगे। अमेरिका और यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालयों में जापानी विद्यार्थियों की संख्या कई हजार तक पहुंच गई। जब ये लोग स्वदेश लौटे तो जापान में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न हो गई। अभी तक जापान में प्राचीन साहित्य की शिक्षा दी जाती थी जिसमें धार्मिकता का प्राबल्य रहता था, लेकिन अब जापान के शिक्षण संस्थानों में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रवेश हुआ। जापान के स्कूलों में पश्चिमी भाषाओं विशेषतः इंग्लिश की पढ़ाई शुरू हुई और कुछ ही समय में जापान में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक गांव और नगर में आरंभिक स्कूलों की स्थापना हुई। प्रत्येक बालक बालिकाओं के लिए 4 वर्ष तक किन्हीं स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। बाद में यह अवधि बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। इन सरकारी स्कूलों में केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती थी वर्ण चरित्र निर्माण का भी प्रयास किया जाता था। देशभक्ति की शिक्षा प्रत्येक बच्चे को दी जाती थी। लड़कियों की शिक्षा में गृह कार्य को विशेष महत्व दिया जाता था। जापान में इस समय जिस शिक्षा पद्धति की स्थापना की गई उस पर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का पूर्ण प्रभाव था। आरंभिक शिक्षण संस्थानों के लिए जापान ने अमेरिका की शिक्षा पद्धति को अपनाया। उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस की पद्धति का अनुकरण किया गया तथा तकनीकी शिक्षा के लिए जर्मन पद्धति को आदर्श माना गया। इसके परिणाम स्वरूप जापान में शीघ्र ही सब प्रकार के शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई और जापानी विद्यार्थियों के लिए अपने ही देश में हर तरह की शिक्षा प्राप्त करना सुलभ हो गया। जापान के उत्थान के परिणाम। आंतरिक दशा में महान परिवर्तन लाने के उपरांत जापान ने विदेशियों के प्रति भी एक नया दृष्टिकोण अपनाया। आंतरिक दृष्टि से जापान अब एक शक्तिशाली देश हो गया था। अब उसे विदेशियों से किसी भी प्रकार का भय नहीं था, अतः वह अब निर्भीक होकर अपनी वैदेशिक नीति का संचालन करने लगा। सर्वप्रथम जापान ने इन सभी असमान संधियों को अंत करने की मांग की जो पाश्चात्य देशों द्वारा उस पर आरोपित की गई थी। जब जापान ने इस तरह की मांग रखी तो पश्चिमी देशों के समक्ष अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इस तरह अल्पकाल में ही जापान विदेशी प्रभुत्व के चुंगल से अपने को मुक्त करने में सफल हो गया। इस प्रकार इन सुधारों के फलस्वरूप जापान एक आधुनिक देश बन गया। मेजी पुनर्स्थापना ने जापान के उत्कर्ष की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और यहाँ से जापान के साम्राज्यवादी जीवन का सूत्रपात हुआ। व्यावसायिक उन्नति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से जापान अब पाश्चात्य देशों के समकक्ष खड़ा हो गया था। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि वह भी यूरोप और अमेरिका का अनुकरण कर साम्राज्यवाद के मार्ग पर अग्रसर हो। 19वीं शताब्दी की समाप्ति से पूर्व ही जापान ने अपना साम्राज्यवादी जीवन आरंभ कर दिया था और 20वीं शताब्दी में इसका पर्याप्त विकास हुआ। वस्तुतः 20वीं शताब्दी में पूर्वी एशिया के इतिहास का मुख्य तत्व साम्राज्यवादी था, जिसका नेता जापान था।